ओम शांति। आज 25 मार्च 2018, आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं, 16 कला संपन्न। इन 16 कलाओं में से एक कला है बोलने की कला या भाषण कला। तो ऐसी जो टोटल 16 कलाएं हैं अलग अलग, बहुत सारे भारतीय ग्रंथों में अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखी हुई है। यज्ञ की किताबों में 16 कलाएं अलग अलग लिखी हुई है। तो ऐसी टोटल जो यहां वहां से या चिंतन करके जो मुख्य ऐसे 16 टॉपिक्स है, जैसे आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग, तो उसकी आज पहली जो कला है भाषण कला या बोलने की कला, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। एक एक कला पर ऐसे 8-8 लेक्चर्स होंगे। तो 16 कलाएं, 16 कलाओं में से पहली कला है बोलने की कला या भाषण कला, उसमें का आज का पहला भाग। ओम शांति।
ओम शांति। बोलने की कला या भाषण करने की कला, इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज की मुरली में देखेंगे तो आज की मुरली में विशेष 4 शक्तियां हैं जो हमारे भाषण को 4 चांद लगा सकती हैं या बोलने में निखार ला सकती है। कौन सी 4 शक्तियां हैं? और वो 4 शक्तियां अत्यंत जरूरी है। 4 स्तंभ, सुनाने की शक्ति, स्वच्छता, पहले ज्ञान की शक्ति, मनन चिंतन। मनन चिंतन और मनन चिंतन से फिर 3 शक्तियां बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति और परखने और निर्णय करने की शक्ति। क्योंकि जिस समय कोई भी भाषण करने मंच पर जाता है तो जो सामने श्रोतागण होते हैं उन सब के चेहरे को परखना बहुत जरूरी है, या वहां निर्णय करना जरूरी है कि कौन से शब्द उनको परोसे जाए, उनको दिए जाए, ताकि वो हजम भी हो सके। और आज बाबा ने आज मुरली में भाषण के बारे में जिक्र किया है कि राजनेता भाषण दुनिया में तो बहुत करते हैं, लेकिन यहां कौन सा भाषण होना चाहिए? कर्म का भाषण। तुम बच्चों को अपने कर्म से भाषण सिखाना उनको। वास्तव में भाषण एक ऐसी कला है, अगर वो अनपढ़ भी सीख जाए तो उसके आगे पढ़े लिखे भी भरीड़ होते हैं। बाबा तो हमको कहते हैं पढ़ो लिखे के आगे अनपढ़ भरीड़ होंगे, लेकिन संसार में देखा जाता है जो राजनेता होते हैं तो वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे उनके आगे भरीड़ होने को मजबूर हो जाते हैं। तो विषय है भाषण कैसे करें और भाषण करने के लिए किन चीजों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, भाषण में हम पारंगत कैसे बने, इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं के अंदर आत्मविश्वास जागृत करना होगा कि हम भाषण कर सकते हैं। और वो आत्मविश्वास जागृत होगा जितना प्रैक्टिस, जितना ज्ञान का खजाना हमारे पास एकत्रित होगा, हमारी बुद्धि रूपी बर्तन में वो ज्ञान का खजाना ठहर चुका होगा। अगर वो निकल जाता है, विस्मृत हो जाता है, तो फिर स्वयं के प्रति भी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो मंच पर जाते ही क्या होता है? डर पैदा होता है, पसीना आता है, कोई डगमगा देते हैं, सामने वाले को देख के ही वो सारा भूल ही जाता है क्या बोलने का है। इसलिए सबसे पहले स्वयं में आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है। तो जितना भी साहित्य है, जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे मन को विचलित ना करे, उस साहित्य को हम जितना पढ़ते जाएंगे उसको अपना बनाते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, तो स्वयं के अंदर ही आत्मविश्वास जागृत होगा, एक नई चेतना जागृत होगी। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें संबंध संपर्क का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम अकेले में रहते हैं, संबंध संपर्क में नहीं जाते हैं, तो भी हमारी प्रतिभाओं में निखार नहीं आता है। जो भी छोटे छोटे संगठन होते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वहां हमको हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। कोई भी मंच उपलब्ध होता है तो मंच पर हमें अगर मौका मिलता है तो कभी चूकना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक मिले। जैसे कल बहुत सुंदर टॉपिक थे, जो 8 टॉपिक थे, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा टॉपिक था, मधुबन में मधुबन परसों थे। और मेरी आवाज सुनो, अंतर्मन के गहरे जखम, यज्ञ मांगता बलिदान, यज्ञ मांग रहा बलिदान। तो वास्तव में बहुत सुंदर टॉपिक है। अगर हमारे पास समय से पहले हमने खजाने को बुद्धि में रखा है, भर के रखा है, तो हम समय पर इन पर बोल सकते हैं। भाषण एक ऐसी चीज है, बहुत व्यापक स्तर पर सेवा हो सकती है, अगर वो भाषण हम निस्वार्थ रूप से और विश्व कल्याण की भावना से करें और कुछ एक बातों को ध्यान में रखते हुए उसको पब्लिक के सामने रखें या श्रोताओं के सामने रखें। क्योंकि भाषण से ऐसा भी होता है कि सामने वाला अगर कोई मौत के मुंह में जा रहा है तो उसको रोका जा सकता है, उसके मन के अंदर एक नया उमंग उत्साह पैदा किया जा सकता है। अगर कोई मन से बहुत मायूस है तो उसके मन के अंदर भी एक जीने की इच्छा पैदा की जा सकती है, उसके मन के अंदर एक खुशी के संकल्प पैदा किए जा सकते हैं, उमंग उत्साह पैदा किया जा सकता है। और भाषण करने के लिए और भी हमको कुछ एक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम भाषण कर रहे हैं तो हमारा ये लक्ष्य ना हो कि हमको केवल ये खाना पूर्ति करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं उसका मूर्त रूप बनना पड़ेगा। संसार का भाषण और इस ईश्वरीय संसार का भाषण दिन रात का फर्क है। संसार में तो नेम फेम भी बहुत होता है, अगर उसी लक्ष्य को लेकर हम इस मंच पर भी ऐसा करते हैं तो उसका उतना फिर प्रभाव नहीं रहता है। और इस मंच पर अर्थात ईश्वरीय मंच पर अगर हम भाषण करते हैं, उसके लिए पहले हमें ईश्वरीय गुणों और शक्तियों से स्वयं को भरपूर करना होगा। जो हम बोलने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में झलकता हो, अर्थात सत्यता की शक्ति हो, निर्भयता हो, निर्भीकता हो और निरहंकारिता हो। अगर अहंकार हमारे शब्दों में झलक रहा है तो वो भी इतना असर नहीं करता है, भले लंबे समय तक हम भाषण कर रहे हैं, सामने वाले को सुना रहे हैं, सामने वालों के से बाबा भी मिल रही है, बाबा कहते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो फिर वो हमारे कर्मों में नहीं आता है। इसलिए उसका मूर्त रूप बनने के लिए हमें ईश्वरीय गुणों और शक्तियों से स्वयं को भी श्रृंगारने की जरूरत है। समय समय पर जो शक्तियां काम में आती है, जैसे बताया, समेटने की शक्ति है, मनन शक्ति है, एकाग्रता की है, परखने की है, निर्णय करने की शक्ति, तो इन गुणों और शक्तियों पर भी काम करना अति आवश्यक है। और लंबे समय का अभ्यास करने के बाद ये हमारे जीवन में स्वतः आती हैं। तो ये छोटे छोटे गोल हैं, तो सबसे पहले तो स्वयं के अंदर आत्मविश्वास जागृत करना कि हाँ हम कर सकते हैं। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, लंबे समय का पुरुषार्थ है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो ही हो सकता है। हमें याद है जब हम नए नए ज्ञान में आए थे तो अभी 15-20 दिन में नहीं हुआ होगा तो हमको बता दिया गया कि 10 मिनट आपको बोलना है। अब हम तो कभी बैठे नहीं स्टेज पर, फिर भी प्रैक्टिस करके हमने मना नहीं किया, लेकिन चले गए हम, तो केवल 2 ही लाइनें बोल पाए, ज्यादा बोले ही नहीं, भूल ही गया क्या बोलना आगे, लेकिन घबराए नहीं हम, 2 लाइनें बोले, फिर नेक्स्ट अगले महीने उसे अगले महीने एक ही लाइन बढ़ती गई धीरे धीरे, तो ऐसे धीरे धीरे निखार आता जाता है। तो हमको आत्मविश्वास जागृत करने के लिए कहां भी मौका मिलता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई में बाबा कहते हैं ना मुरली से प्यार, जब तक जीना तब तक पढ़ना है। ऐसा नहीं है हम भाषण में परंगत हो गए तो हम सब कुछ सीख गए। जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं या संसार में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में जाते हैं तो अलग अलग विषयों पर भाषण करने के लिए हमको मौका मिलता है, और उस विषय के अनुकूल हमारा भाषण हो तो उस विषय में भी हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम उस विषय से बाहर जा रहे हैं तो सामने वाली पब्लिक भी सुस्ताने लग जाती है, उसमें वो भी फिर बोर होने लगती है, फिर वो भी सोचते हैं कब इनका भाषण पूरा खत्म हो जाए तो हम जाएं। इसी के ऊपर एक नेताजी थे, तो एक नेता जी गांव में भाषण करने जाते हैं। अब गांव में भाषण करने जब नेताजी वहां पहुंचते हैं तो वहां देखा एक ही व्यक्ति है बेचारा, किसान बैठा हुआ है, बाकी कोई है ही नहीं है। अब क्या किया जाए? तो नेताजी ने पूछा किसान से कि भाई क्या किया जाए। तो किसान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोला जब मैं जाता हूं अगर अपने पशुओं के बाड़े में, तो अगर 20 गायें वहां हैं और 20 में से 20 नहीं है, वहां एक ही गाय है केवल, तो मैं उसको घास जरूर खिला के आता हूं, खाली नहीं आता हूं। तो नेताजी समझ गए भाई ये एक ही व्यक्ति है तो भाषण जरूर करना पड़ेगा इसको। तो नेताजी ने बड़ा जोरदार धुआंधार भाषण शुरू किया और सुनता रहा बेचारा, और सुनता रहा बहुत लंबे समय तक। अब बेचारा किसान क्या करता? तो जब भाषण को विराम लगा तो नेताजी ने पूछा कैसी रही? तो किसान बोलता है कि अभी क्या बताऊं जी, मन में आ रहा था कब ये भाषण खत्म हो, मेरे तबीयत जो ना भागी भागी तबीयत रही, ये कब भागू यहां से, लेकिन भाग भी नहीं सकता था, एक ही या कोई दूसरा कोई आपको सुनने वाला नहीं है। तो आपने 20 गायों का जो चारा था ना वो मुझे अकेले को खिला दिया है, तो बताओ मेरी तबीयत कैसी होगी। तो बोला ऐसा नहीं, नेता ही बुद्धिमान होते हैं, हम किसान लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। आपको पहले बताया था कि एक ही गाय है तो एक ही गाय को खाना खिलाएंगे ना, 20 को थोड़ा खिलाएंगे, और आपने 20 लोगों का भाषण मेरे पर झाड़ दिया, तो बताओ मेरी तबीयत भागी भागी नहीं रही तो कैसी होगी, अब भागूंगे तब भागू। तो इस तरीके से तो भाषण हम जहां परोस रहे हैं उस विषय से अगर हम हटकर जाते हैं तो वह उसका रस खत्म हो जाता है। इसलिए विषय के अनुकूल हो, उस विषय पर हमारी गहरी पकड़ हो, जितना भी हमको इधर उधर से ढूंढना पड़े ढूंढकर उस विषय पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाए, ताकि सामने वाले को उसका फायदा मिल सके, नहीं तो वो खाना पूर्ति वाला रह जाएगा। दूसरा, प्रभावशाली भाषण तब बनता है, शब्दों की भी पकड़ हमारी होनी चाहिए। तो लिटरेचर में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, और हमारे ईश्वरीय लिटरेचर में बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे जगदीश भाई साहब की अनेक किताबें हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जो दूसरे के दिल को भेदने वाले हैं, और वो शब्द सुनने के बाद ही हमारा जो खून ठंडा हो चुका होता है वो गर्म हो जाता है कुछ करने के लिए। ऐसे जोरदार भाषण कईयों के होते हैं तो वो खून हमारा जैसे खोलने लगे कुछ करने के लिए, प्रेरित हो ताकि जीवन में हम आगे बढ़ सके। तो स्वयं के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक तो लिटरेचर का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरी बात जो बताई गई कि अधिक से अधिक लोगों से हमारा संबंध संपर्क यथार्थ रूप से होना चाहिए, ताकि हम अनेक लोगों के संबंध संपर्क में आने से बहुत कुछ सीख सकें कि उनकी व्यवहारिक शैली कैसी है, उनके बोल कैसे हैं, वो संबंध संपर्क में कैसे आते हैं, अगर वो भाषण करने मंच पर जाते हैं तो वो किन चीजों का ध्यान रखते हैं, उनके भाषण को कैसे पब्लिक अप्रिशिएट करती है, कैसे वो सीख रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनको देख देख और भी सीख सकते हैं। इसलिए संबंध संपर्क का दायरा भी हमें जितना हो सके उसे हमको सीखने का अपनी परिपाटी बनी रहनी चाहिए। केवल संबंध संपर्क बढ़ाना नहीं है, लेकिन हम जग हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए संबंध संपर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बन सके। तीसरी बात बताई कि छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, हमको कभी पीछे नहीं हटना है, भले कुछ भी हो, एक परिवार है, अगर असफलता होती है तो असफलता ही हमारा सफलता के लिए रास्ता खोलती है। अगर हम सफलता समझ के बैठ जाएंगे तो कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए असफलता भी एक चुनौती, उसको स्वीकार करके सफलता के मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो तीसरी बात होगी संबंध संपर्क का दायरा। चौथी बात है जो बताई गई कि गुणों और शक्तियों की हम मूर्त बने, जो भी ईश्वरीय गुण शक्तियां हैं वो हमारे बने। और पांचवी बात है, जब हम भाषण शुरुआत करते हैं तो मंच का अभिनंदन सबसे पहले किया जाता है, कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन दी लास्ट इम्प्रेशन। तो जो भी हम मंच का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तहे दिल से, हो सके जहां तक जो मंच पर बैठे हुए हैं जितने भी वक्ता हैं, अगर उनकी विशेषताओं का, उनका परिचय अगर हमारे पास पहले से ही है और उसी के अनुकूल हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी विशेषताओं का बखान पब्लिक के सामने करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है, और उस एटमोस्फेयर में फिर उन चीजों को ग्रहण करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम यथार्थ रूप से उनका परिचय दे रहे हैं, ऊपर से नहीं दे रहे हैं। तो मंच का अभिनंदन भी हमको बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत ईश्वरीय भाषा में दिया जाना चाहिए। तो ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। दूसरा, जब हम भाषण करने जा रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बहुत मायने रखती है बॉडी लैंग्वेज। जितने भी श्रोतागण पब्लिक में बैठे होते हैं, जितने भी हमारी सभा लगी हुई है, तो सबकी आंखों में आंखें हमारी जानी चाहिए। हाँ, इधर नहीं देखने का। ये एक बात और याद आ गई, तो हमारे चंद्रमोहन भाई जो हैं, जो बर्मा वाले, तो जब वो यहां से इंडिया से गए थे बर्मा में, दादी जानकी जी ने भेजा था उनको, तो लंबे समय तक वहां कोई पब्लिक नहीं थे, कोई भाई बहन नहीं थे, इतने ज्ञान में आते नहीं थे, अकेले रहे। जब वो वापस आए तो दादी जी ने पूछा कि कैसी सेवा चल रही है, तो बोला दादी जी क्या बताऊं, एक भी नहीं आता कोई सुनने के लिए। तो दादी जी ने कहा, सामने दरी तो रखी होती है कि नहीं, आप दरी को सुनाओ। दरी को सुनाओ। सोचो बहुत पब्लिक बैठ रही है। ऐसे हमारे ब्रह्मा भी कैसे करते थे, सामने कितने लोग, लेकिन जैसे पूरे संसार को सुना रहे हैं। तो दादी जान कीजिए वैसे, तो अनेक इस तरह के एग्जाम्पल हैं इस यज्ञ में भी, कि चाहे थोड़े हैं, बेचारा एक ही है, लेकिन 20 का सुनाई नहीं निकल। तो ये परिपाटी लगता है यहीं से लागू हुई है। तो चल रही थी बात बॉडी लैंग्वेज की, तो हमारा आई कॉन्टेक्ट जो है वो सबके साथ बने रहना चाहिए, ताकि वो सब सामने वाले एक अपनेपन की फीलिंग अनुभव करें। ऐसे नहीं सोचे किसी एक विशेष व्यक्ति की तरफ ही हमारा इशारा हो, सभी अपने हैं, क्योंकि सबको हमको अनुभूति, सबको साथ लेके चलना है, तो सबको अनुभूति कराने के लिए आई कॉन्टेक्ट सबके साथ बना रहना चाहिए। अगर आई कॉन्टेक्ट नहीं बनता तो उतना मजा भी नहीं आता। दूसरा, हमारे हाथ पांव, ये भी बहुत मायने रखते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी देखते रहना, धीरे धीरे नहीं भूलना, खत्म हो जाएगा। और सामने वाले भी कई बार क्या होता है, हाँ उसमें और बात अच्छी है, भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि पब्लिक में कोई सभी एक जैसे नहीं है, कोई शरारती तत्व भी होते हैं। तो सामने वाला शरारती कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको विचलित नहीं होना उसमें। तो हमारे लंबे समय का अभ्यास होना चाहिए कि सामने पब्लिक में, अभी आजकल सुनने को भी आता है सामने से कोई चप्पल ही मार देता है, लेकिन वो नेता है अपना भाषण फिर फ्यूचर के लिए बंद थोड़ा नहीं कर देते हैं। तो ये जो बात बता रहे थे श्याम भाई जी, तो पब्लिक में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां सहन करने की शक्ति बहुत जरूरी है, एडजस्टमेंट होना। अगर सामने वाला चप्पल मार ही रहा है तो उसके ऊपर भी भाषण करना शुरू कर दे, हम उसको भी पॉजिटिव व्यू से ले सकते हैं, कॉमेंट ले सकते हैं कि देखो हमको अभी हमारे में बहुत, उसमें हम अपनी कमी को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे में कमी है, तभी सामने वाला ऐसी प्रतिक्रिया कर रहा है, इसलिए हम इस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज की बात चल रही थी, तो सामने वाला कुछ कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज भी इस भाषण कला में बहुत मायने रखती है। तो सबसे आई कॉन्टेक्ट, हमारे हाथ पांव जो है, हमारी दृष्टि जो है, गर्दन है, उसके अनुरूप हमारा चेहरा भी थोड़ा सा परिवर्तन, अगर खुशी वाला तो चेहरा भी खुशी वाला होना चाहिए, अगर थोड़ा उदास वाला तो चेहरे पर वो प्रदर्शित हो ही जाता है, स्वतः ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज की बहुत जरूरी है। अगली बात, समय, मंच पर जो भाषण करने जाते हैं तो समय होता है कभी 7 मिनट का, 10 मिनट का, आधा घंटा, उसी का अनुकूल होना चाहिए। लेकिन एक और बात होती है, कई बारी मंच पर ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाता है लेकिन आते 2-3 ही हैं, तो हमको उस भाषण को बढ़ाना भी पड़ता है। अगर हमको जो स्टेज सेक्रेटरी है, मंच सचिव, अगर वो इशारा देता है कि आप और बोलो, तो हमको पहले से वो मटेरियल हमारी बुद्धि में होना चाहिए, ताकि हम 7 मिनट बजाय 14 मिनट भी कर सके। चिट्ठी जाती है, लेकिन ये होता है, लेकिन जब ग्रामीण शैलियां कहीं कहीं देखा हमने, कई लोग नहीं आ पाते हैं, तो वहां बोलना ही पड़ता, तो पहले से हमको अगर कोई आए या नहीं आए, लेकिन हमको तो पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो ये भी है, समय के अनुकूल हमारा वो भाषण, उसी दायरे में विषय के अनुकूल, विषय के अनुरूप हम उसी समय के अंतर्गत उसको पूरा बता सके। चाहे वो कम समय मिले तो हमको कम, जैसे 3 मिनट में ला दो, 3 मिनट के अंतर ही बताना है। अगर ज्यादा समय मिलता है तो ज्यादा समय के अंदर बताना है। तो समय के अनुकूल भी हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि समय के अनुकूल हमारा वो भाषण पूरा हो, या समय ज्यादा मिले तब भी उसके अनुसार हम कर सकें। और एक बात है, भाषण के बीच में हम दूसरों के अनुभव शेयर कर सकते हैं, या बीच में कहानियां, या अपना अनुभव, या फिर कोई एक चुटकुला भी हो सकता है। और भाषण के समय, या हमने अपने जीवन में जो भाषण सीखा है, तो हमको क्या क्या ऑब्स्टेकल आए हैं या क्या क्या विघ्न आए हैं, क्या क्या परिस्थिति आई है, उन विघ्नों से हम कैसे पार हुए, तो उसका भी हम अपना अनुभव कर सकते हैं, या जिस विषय को लेकर कर रहे हैं उस विषय में हमको क्या क्या विघ्न आए हैं, उससे हमने कैसे पार किया। क्योंकि संसार में सफलता तो आती है, जैसे हम देख रहे हैं आज जो संसार का जो ये वैज्ञानिक प्रकृति का युग है, उसमें जो सबसे आजकल चलता है व्हाट्सएप, तो इसके जो क्या थे उसके अनुसंधानकर्ता, इसको निकालने वाले खोजी जो थे दो साइंटिस्ट, एक कैलिफोर्निया के दो साइंटिस्ट हैं जेन कॉम और ब्रायन, कुछ ऐसे दो लोग हैं, तो पहले किसी कंपनी में काम करते थे। कंपनी में काम करते करते उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा देके व्हाट्सएप की खोज की शुरू। तो उनके अनेक प्रकार की असफलताएं मिली, लेकिन धीरे धीरे करके उनको सफलता मिल गई, और सफलता मिल गई लेकिन उसके लिए पैसा बहुत चाहिए था, और ऐसे समय पर आ गए कि उनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं था, और कंपनियों से उन्होंने मांगना शुरू किया तो भी कंपनियों ने उनको कोई साथ नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों से किया शुरू, तो जैसे जैसे दोस्तों से सहयोग मिला तो अपने कार्य में वो सक्सेस हो गए, और जिस फेसबुक कंपनी से वो अपनी हेल्प मांगने गए थे वो फेसबुक कंपनी ने मना कर दिया था, और आज उसी फेसबुक कंपनी में उनका बहुत बड़ा शेयर है। तो जीवन में असफलता तो मिलती है, चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमको उन पर रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम अपनी भाषण कला या किसी भी क्षेत्र में कोई भी कला में निखार ला सकें। दूसरी एक बात चल रही थी, भाषण के लिए कोई पढ़ा लिखा होने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। जैसे बताया ना, आजकल संसार में राजनेता अनपढ़ों के आगे भी पढ़े लिखे भरीड होते हैं, तो ऐसे ही सहज्ञ की भी एक बात है। ये कुछ साल पहले की बात है, एक माताजी प्रदर्शनी समझा रहे थे, तो पहले लक्ष्मण चित्र का समझाया, शिव बाबा का चित्र समझाया, फिर झाड़ गोला सीढ़ी सब समझाया धीरे धीरे, तो सुनने आए थे कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब को सब सुनाया, फिर माताजी ने बीच में बताया था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो कलेक्टर जी उस पर अड़ गए, बोला नहीं वो तो सर्वव्यापी है। तो माताजी ने अब क्या ज्ञान तो माताजी को जितना उतना सुनाना, लेकिन माताजी तो अनुभवी थी, तो माताजी ने उसके ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से देखा, बोलता लगते तो तुम बड़े बड़े पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो कलेक्टर इतनी बात पर ही पिघल गया वो, और वहीं से पक्का हो गया ज्ञान में। तो वहां वो पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, वहां तो माताजी के अनुभव ने काम किया और वो कलेक्टर जी ज्ञान में आ गए। तो उन्होंने आके फिर सेंटर पर आके अनुभव सुनाया कि कैसे कैसे माताजी ने सुनाया। तो इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है कि हम पढ़े नहीं है, हमको इतना ज्ञान नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आजकल के नेता जो एक्सपीरियंस होता है उनके पास, तो एक्सपीरियंस के बल पर फिर पढ़े लिखे भी उनके अधीन हो जाते हैं। तो ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है जो हम सबको मिल रही है, और वरदान बाबा का हमको मिल जाता है, दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का। लेकिन इस कला को निखारने के लिए हमें स्वयं के जीवन में जो अनेक प्रकार के हमें मौके मिलते हैं, चांस मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, इन पर हम धीरे धीरे अगर काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो हमारी सब कलाओं में निखार आ जाएगा। और निखार लाने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, तो इन देखेंगे कि भाषण करने के लिए जो हम 8-10 बातों पर चिंतन किया, मनन किया, और भी बातें हो सकेंगी। अभी 128 किस्तें चलने वाली है, तो धीरे धीरे सब निकालेंगे। तो सबसे पहली बात निकाली हमने, हाँ वो एक बात रहेगी, भाषण में क्या क्या नहीं करना है ये चीज बताने के लिए भूल गए। जहां भाषण करने जा रहे तो किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष नहीं होना चाहिए, व्यंग्य नहीं होना चाहिए, किसी के दिल को ऐसे नहीं लगा कि हमें सामने निशाना रख के बनाकर हम हमारे ऊपर बोला जा रहा है। सार्वजनिक रूप से सभी को एक समान वो बात लगनी चाहिए कि हम सबके लिए बात है। और क्या क्या नहीं होना चाहिए है? हाँ अच्छी बात है, किसी धर्म जाति पाति के ऊपर क्या विशेष जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऊपर या किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ उसमें एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति या फलाना व्यक्ति नाम ले लेना चाहिए, तो अगर वो नाम लेते हैं तो इसमें बहुत सारा प्रोपोगंडा पैदा हो सकता है, क्योंकि आजकल मीडिया देखते हैं होता कुछ और है, भले हम किसी और उद्देश्य से बोल रहे हैं लेकिन मीडिया बहुत एक्टिव बैठा हुआ है, तो वो तिल का फिर ताड़ बना देता है, और फिर वो एक ही बात को पूरा घुमा फिरा के 24 घंटे एक महीना चलाते रहेंगे उसको, है ना। जैसे एक वो था ना, एक चुटकला है कि एक पत्रकार जाता है एक किसान के पास, उसके पास दो बकरियां होती हैं, एक सफेद बकरी होती एक काली बकरी होती है। तो जाता है किसान किसान के पास, तो पत्रकार किसान को पूछता है कि बकरियां क्या खाती हैं। तो किसान ने पूछा ये सफेद वाली या काली वाली, तो बोला ये सफेद वाली क्या खाती है, बोले घास खाती है, बोला ये काली वाली क्या खाती है, बोले ये भी घास खाती है। अच्छा, और फिर उसने पूछा अच्छा ये सफेद वाली ये बकरियां दूध देती हैं, उसने पूछा कौन सी बकरी वाली सफेद वाली या काली वाली, बोला सफेद वाली, बोला हाँ ये भी देती है, बोला काली वाली, बोला ये भी देती है। अच्छा ये भागती तो नहीं है, बोला कौन सी सफेद वाली या काली वाली, बोला सफेद वाली, बोला नहीं भागती, बोला काली वाली, बोला ये भी नहीं भागती। तो बोला जब मैं तुमको पूछ रहा हूं तो एक ही जवाब को दो दो बार क्यों दे रहे हो। तो बोला अब लगे ना तुमको पता, जब खबर एक ही होती है और तुमको 24 घंटे और 12 महीने पीछे पड़े रहते हो तो पता लगा कितना होता है, तो तुम एक ही बात को पूछ रहे है बार बार, बात एक ही है। तो ऐसे जो मीडिया है ना आजकल सारा गड़बड़ा गया है, मीडिया में वो मूल्य नहीं रहे वास्तव में। अब देखो हम कभी कभी देखते हैं तो धर्म को धर्म युद्ध इस तरह से छिड़ा हुआ है कि वहां लड़ाने का काम किया जा रहा है। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है वो तो संसार को थमाने के लिए, लेकिन वहां ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं कि सामने वाला जैसे खून खोल उठता है। हिंदू मुसलमान सामने या किसी भी धर्म प्रजाति का है वो सब आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, बातों बातों में इतनी लड़ाई होती है कि सामने सुनने वाले तो उत्तेजक हो ही जाएंगे जरूर। तो इसलिए हमको अगर भाषण करने हम जा रहे हैं तो किसी धर्म जाति विशेष संप्रदाय विशेष व्यक्ति को सामने निशाना बनाते हुए हमको उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करनी कि सामने के परिणाम भुगतने के लिए हमको फिर लाले पड़ जाए। तो ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दस बातों पर शायद चिंतन हुआ। सबसे पहली बात कि भाषण के लिए सबसे पहले स्वयं में एक आत्मविश्वास पैदा करना है ताकि हम मंच पर जाके निर्भीकता से भाषण कर सकें। दूसरी बात, अपने संबंध संपर्क का दायरा हमको कम नहीं करना है, क्योंकि हमको जितना संबंध संपर्क का दायरा है हमको सीखना, उसके पीछे नहीं भागना है। तीसरी बात गुण शक्तियां चौथी है। तीसरी बात है संबंध संपर्क का दायरा हो गया, छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है, जो भी हमको मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं है। चौथी बात है ज्ञान गुण शक्तियां जो भी ईश्वरीय खजाने हैं उनको स्वयं में भरना है ताकि हमारा जो भाषण है ये ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हो हमारा भाषण। और पांचवी बात है मंच का अभिनंदन, जो भी हम मंच पर बैठे हैं जो भाषण करते हैं वक्त हैं उनका अभिनंदन तहे दिल से, उनकी विशेषताओं को जानते हुए उनका अभिनंदन ठीक से करना है। और पांचवी नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है उस पर भी विशेष नियंत्रण होना जरूरी है। नेक्स्ट सातवीं बात है विषय के अनुरूप ही हमारा भाषण हो। आठवीं बात है समय के अनुरूप हो, समय के अनुकूल हो, जितना हमें समय दिया जा रहा है उसी के अनुकूल हो। और नेक्स्ट है उसमें विशेष उदाहरण किसी का दिया जाए, कोई प्रेरक कहानियां कोई चुटकला उस तरीके से। दस होगी कटाक्ष, हाँ व्यंग्य ना हो, किसी पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दे कि ताकि वो सारे पानी में चला रहे किया कराए। हाँ माइक बंद किया हो गया तो माइक बंद हो जाए, लेकिन हमारी मान स्थिति की हाँ वो जो मोदी जी ने बोला था माइक बंद हो गया है तो उन्होंने बोला था मीडिया वाले कहेंगे मोदी जी की बोलती बंद हो गई है शायद ऐसा बोला था उन्होंने। तो वास्तव में उस समय भी उस समय को हमको एक हास्य का समय बना दिया जाना चाहिए कि उस समय अगर हमारी आवाज नहीं पब्लिक में जा रही है लेकिन जब माइक चालू होता तो हम पब्लिक को बता सकते हैं कि इतने समय में हमने क्या किया, या वो कोई चुटकले से उसको जोड़ दिया जैसे किसी कहानी से जुड़ जाते हैं, या उस समय हमने क्या किया और आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए हमको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से उस समय का भी फायदा हम ले सकते हैं, उस समय को भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। हाँ, जब हमारी मानसिक स्थिति अगर अच्छी है तो बोले माइक चला जाए या लाइट चली जाए, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति श्रेष्ठ है तो हम वाइब्रेशन फैलाएं, अच्छे अच्छे प्रकंपन दें, शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन दें, किरणें फैलाएं जो हमारे तो भाषण दुनिया वाले तो नहीं है ना, अलग प्रकार से सूक्ष्म है। जो आज बाबा ने कहा कर्म से भाषण, अगर हम वहां योग युक्त होकर बैठे हैं तो हो सकता किसी को साक्षात्कार हो जाए दुर्गा का अम्बा का काली का, तो वो चीज है बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जो है ना भाषण अपने आप ही हो जाएगा। और कुछ कोई प्रश्न? हाँ एक और बात थी, ये जो कागज की है, कागज की तो बाबा भी मना करते कि कागज लेके भाषण, क्योंकि वो भी संसार में भी अच्छा नहीं माना जाता उसको। और बाबा ने कन्याओं को पिछले संडे में कहा था कन्याओं को भाषण में एकदम ललकार करनी चाहिए, खड़े होना चाहिए, सीखना चाहिए भाषण, स्कूल में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी सीखना चाहिए, बड़े खुशी से करना चाहिए, बड़ी मस्ती से करना चाहिए। तो भाषण की अनेक प्रकार की बाबा की बातें आती रहती हैं कि कहाँ कहाँ भाषण करो, धर्मशाला में जाओ, अगर सेकंड फर्स्ट फ्लोर में नहीं मिलता तो सेकंड में ले लो, सेकंड में मिलता तो थर्ड फ्लोर में, लेकिन लो जरूर। और धीरे धीरे वो आपके भाषण को देख के वो जगह भी दे देंगे, छोटी छोटी बच्चों को जाके भाषण करना चाहिए। तो ये भी चीजें थी, पढ़ के नहीं सुनाने का, वो बात तो सही है। ये हमने सारा लिखा हुआ वैसे, और हमने वो नेट में देखा, उतना मजा नहीं आया हमको, ये सारा हमने खुद ही लिखा है। तो वो चिंतन हम करेंगे तो स्वतः अपने आप आएगा। और कुछ? हाँ जी, हाँ, बीच में लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो तो हमको एक बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर मिलता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। उनको डिस्टर्ब करने के बजाय उन्हीं को खुशी खुशी के माहौल में ला देना चाहिए। जैसे देखा है अगर कोई थोड़ा टाइम ज्यादा भी होता है, कोई हलचल में आने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा हमको कम टाइम में हम पूरा कर देंगे। तो हाँ, तो वो सामने वाले तो उसमें हलचल में वो चेंज करते हैं, वो तो उनका स्वभाव है, हम अपने स्वभाव से नीचे क्यों आए। हाँ, उनको बताया जा सकता कि आपके प्रश्न, उनके प्रश्नों को हम नजायज में ठहराएं, उनको हमको बोलना कि आपके प्रश्न जायज हैं, लेकिन इस विषय के बाद हमको बात करेंगे और इस पर विशेष क्लास लेंगे आगे। तो वो पर्सनल प्रश्न को भी अगर वो इस विषय के अनुकूल हो तो उस इसमें जवाब देना तो मुनासिब है, अगर वो समय नहीं है तो उसके बाद में क्लास के बाद मिल सकते हैं, जैसे वहां बैठते हैं मिलकर थे लोग आपस में। ठीक, बड़ी सभा में प्रश्न होते हैं, अगर जायज है तो बड़ी सभा में प्रश्न देने के उत्तर दिया जा सकता है, अगर वो ऐसा नहीं है तो सभा ही उसको रोक देगी, अगर वो प्रश्न उस सभा के मुताबिक नहीं, उस माहौल के मुताबिक नहीं है तो वास्तव में सभा वाले रोक देते हैं उसको, अगर वो मुनासिब है तो सभा वाले भी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उस पर तो प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ओम शांति।